गान में हे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे। समय सार गाथा 141 में प्रश्न नंबर 225 समय सार अनुशीलन भाग दो। इसमें अपन ने गाथा और उसकी आत्मख्याति टीका का अर्थ पढ़ लिया था। हम नीचे तात्पर्य वृत्ति क्या के बारे में कुछ कहा गया है उसको अपन देखते हैं। तात्पर्य वृत्ति में इसकी टीका में तो कुछ विशेष नहीं कहा, किंतु 141 गाथा से 144 तक की गाथाओं में समुदाय पातनिका में उनकी विषय वस्तु का जो संकेत किया है वह दृष्टव्य है एवं इस प्रकार है। ये समुदाय पातनिका क्या होती है, ये जयसेन की टीका में मिलती है और जयसेन की टीका की स्टाइल पर और जो टीकाएं लिखी हैं उनमें भी ये बात मिलती है अन्य ग्रंथों की। वो क्या करते हैं कि जब कोई अध्याय पर अधिकार पर वो प्रवचन टीका लिखना शुरू करते हैं तो पूरे अधिकार में क्या बताएंगे वो बताते हैं और फिर उसको कई समुदायों में बांटते हैं। जैसे अपन ने कहा था ये 10 गाथाओं का ग्रुप था, फिर अपने शिविर में 10 गाथाओं का ग्रुप चला, तो उनका जो बीच में वो बताते हैं तो उसको भी समुदाय पातन का मान इतनी गाथाओं में क्या कहा जाएगा वो ये बताते हैं। मैंने यहां से मैंने कल कहा था ना कि अब विषय बदल रहा है, बदल नहीं रहा है, बात तो वही है, पर इतनी सी बात है कि अभी तक नयों से बात समझाई जा रही थी कि निश्चय नये से ऐसा है और व्यवहार नये से ऐसा है और अब वे नये पक्षातीत बात को समझाएंगे। इन चार गाथाओं में नये पक्षातीत बात को समझाएंगे तो उसमें भी नये पक्ष भी आएंगे। जो 20 कलश आने वाले हैं ना वो इसमें ही आएंगे 42वीं गाथा के बाद। तो नये पक्षातीत जो भगवान आत्मा है वो हमारी दृष्टि का विषय है और उसके आश्रय से ही सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है और इसीलिए 144वीं गाथा में जाकर फिर आत्मा का अनुभव कैसे होता है, नये पक्षातीत आत्मा कैसे होता है इस बात को स्पष्ट करेंगे। ये बात उन्होंने इस समुदाय पातनिका में कही है। अब अपन कल से गाथा का पाठ करेंगे ना तो इस 41 से शुरू करेंगे और सिर्फ 44 तक सिर्फ 4 गाथाएं पढ़ेंगे और अब यहां से जितने कलश शुरू होंगे वो सारे कलश पढ़ेंगे। 20 कलश वो आएंगे जो बिल्कुल एक से ही रिपीट होंगे और इनका प्रवचन जब तक चलेगा 8-10 दिन में तब 10 दिन तक अपने 20 कलश बराबर पढ़ेंगे जिससे अपने ध्यान में वो बात आ जाए। ये आपको अभी मैंने समयसार कलश का खुद गलमों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब वहां से जानबूझकर इसलिए शुरू कराया कि सबको याद हो जाएंगे। ये 2 कलश बहुत मार्मिक हैं, ये ऐसे हैं कि अपने बेडरूम में ये सामने लिखाने लायक हैं और नवोकार मंत्र का जाप करो 9 दफे की जगह 3 दफे पढ़ लेना, लेकिन इन 2 छंदों को पढ़ना जिससे आपको रोजाना याद आए कि जब पुद्गलों में प्रणमन की ताकत है और तुम्हारी की कोई जरूरत नहीं है तो तुम जबरदस्ती बीच में क्यों घुसना चाहते हो, और जब तुम में स्वयं प्रणमन की शक्ति है और दूसरे की रंच मात्र भी उसमें जरूरत नहीं है तो दूसरों का मुख क्यों देखते हो, अपना अच्छे बुरे का जिम्मेवार दूसरों को क्यों मानते हो। ये बात हमारे पास 24 घंटा ये महासिद्धांत जैन दर्शन का है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। मैं नवोकार मंत्र की महिमा कम नहीं करना चाहता हूं। एक दिन और कहा था मैंने, उसका मेरा एक दो घंटे का व्याख्यान अलग है नवोकार महामंत्र की महिमा का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अभी कि उसमें है क्या, बस अनंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। यदि आप पंच परमेश्वरी का स्वरूप नहीं जानते हैं तो वह क्या है, तोता जैसा रटंत है। जिनको नमस्कार किया है उनका स्वरूप जानना चाहिए ना। इसलिए टोडामल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में शुरू में ही पंच परमेश्वरी का स्वरूप स्पष्ट किया है। और अब उनको नमस्कार तो किया है क्यों, लेकिन यहां तो वो कह रहे हैं कि जो हम 24 घंटा हमारे खून में वो जमा हुआ है कि मैं उसका सहयोग करूं, मैं उसका सहयोग लूं। तो सब काम सहयोग से ही होते हैं भाई साहब। लोग में ये कहावत चलती है क्या कि जो ऐसा मानता है कि मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चलेगा वो मूर्ख है। खैर सुनना, दुनिया तो चलेगी, तेरे बिना दुनिया कोई काम अटकने वाला नहीं है। एक पहला वाक्य तो ये है और दूसरा वाक्य ऐसा है कि जिससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं लेकिन आपको सुना रहा हूं। पहला क्या है कि जो ये मानता है कि दुनिया का काम मेरे बिना नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, वो मूर्ख है। और दूसरा कौन है, जो ऐसा मानता है कि मैं दुनिया के बिना अपना काम चला लूंगा, वो महामूर्ख है। एक कहावत मैंने बहुत बचपन से सुनी है। माने उनका कहना यह चाहता है कि दोनों में का परस्पर सहयोग से काम होते हैं, और यहां इसके विरुद्ध बात कही जा रही है। आई ये बात नहीं गुरुदेव की भाषा में है क्या, माने वो उससे पहले की भी मिट्टी पलीत हो गई। वो जरा अच्छी थी ना कि तुम समझते हो कि मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चलेगा, तो वो थोड़ी अच्छी लगती थी ना कि तुम इतने हाथी पे मत बैठ जाओ, जरा जमीन पे देखो। लेकिन दूसरी बात कह करके कि पहली को भी क्यों कि तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा तुम्हें भी दूसरों का सहयोग लेना पड़ेगा और दूसरों का सहयोग करना भी पड़ेगा, ऐसा अर्थ हो गया उसका। और मैं अपने बचपन से ही बहुत ही कुछ कैसा था मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं कहा करता था जब मुझे तत्व ज्ञान की का गंध भी नहीं आई थी कि जो आदमी मेरे से ये कहेगा, मेरे खून में है वो, अभी निकला कि नहीं निकला मैं नहीं जानता, कि जो आदमी मेरे से ये कहेगा कि मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, मैं दुनिया में उसके बिना ही काम चला के बताऊंगा। ये 8 वर्ष की उम्र से मेरा चिंतन था और उसको मैंने किस लेवल तक निभाया आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वे सारे गांव वाले मेरे विरुद्ध हो गए कि ये 18-20 वर्ष का छोकरा सबको चैलेंज करता है। तो जब मेरी शादी हुई तो नाई को भड़का दिया, धोबी को भड़का दिया, वो पानी भरने वाले होते हैं ना उनको भड़का दिया, सब हड़ताल करके भाग गए। तो मैंने एक गरैया को नाई बनाया और मेरी बारात में नाई बन के गरैया गया, पानी की व्यवस्था भी अलग की लेकिन उनको मनाया नहीं। और जो ये कहते थे कि अब तुम्हारी शादी होगी जब हम बताएंगे, हम कोई नहीं आएंगे, तो मैंने अपने घर वालों को प्रतिज्ञा दिलाई कि इन किसी को बुलाने कोई नहीं जाएगा, मैं ही जाऊंगा। क्या समझ रहे, हमारे नियम है कि वो जाना पड़ता है बुलाने। तो मेरी शादी में मैं गया, चक्कर लगाया, सबके घर में आवाज दी, पधारो साहब, 10 बजे गया, 9 बजे गया, 11 बजे गया, और बस आकर के कहा चलो सुन कैसा वो, हाँ हाँ बस कुछ नहीं आप बैठे रहो अपने घर, कुछ नहीं। कल्पना कर सकते हैं आप उस उम्र के इस आदमी के बारे में, अभी कितना होगा इसका खून गर्म क्या? अभी भी वे तत्व मेरे में से पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, ये बात मुझे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है कि कोई आदमी ये सोचे कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। समझे ना? और ऐसा भी मुझे भ्रम नहीं है कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, क्योंकि आखिर मैं एक दिन नहीं रहूंगा तो दुनिया के सारे काम तो चलने ही वाले हैं, और ऐसा कोई क्यों चाहेगा? यदि ये धर्म का प्रचार दिन दूना और रात चौगुना बढ़े, ऐसा गुरुदेव श्री चाहते थे, तो वे एक कैसे चाहें कि मेरे बिना तत्व का प्रचार नहीं होगा? क्यों? वे तो चाहते हैं कि दिन दूना और रात चौगुना हो, तो हम भी ऐसा कैसे चाह सकते हैं कि हमारे जाने के साथ सब साफ हो जाए? हम तो चाहते हैं दिन दूना और रात चौगुना बढ़े। तो अब ये दोनों नए पक्ष भी बताएंगे और वो कहेंगे दोनों ही नए पक्ष हैं। देखो हम निश्चयवादी हैं, हम व्यवहार को हे मानते हैं, अब ये आ गया कि ना निश्चयवादी मोक्ष जाएंगे ना व्यवहारवादी मोक्ष जाएंगे। कौन मोक्ष जाएंगे? तत्ववेदी। क्या पढ़ो कलश आएंगे ना? आगे पढ़ो, एक आध दो कलश पढ़ो भाई। ना बना है ना छूटा है तत्ववेदी की दृष्टि में, ख्याल नहीं ना? और ऐसे ये 20 कलश आएंगे। इतनी बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 20 कलश बिल्कुल एक से होंगे, सिर्फ एक एक शब्द बदला होगा, फिर भी मैं बराबर 10 दिन तक ये 20 कलशों का पाठ कराऊंगा। आप ये इंतजार नहीं करना कोई विद्यार्थी खासकर कि ये जब दादा का प्रश्न शुरू हो जाएगा तब तक हम पहुंच जाएंगे, तो पहले छंद से उनको यहां उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। और मैं भी सुनता हूं वहां, मुझे वहां से जब बीच में यहां आता हूं तो जो आधा मिनट का 5 सेकंड का गैप पड़ता है वो भी बर्दाश्त नहीं है क्या? उतने समय भी मैं बिना सुने रहूं ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है, समझे ना? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पाठ को आप उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखें। इसको बंद कराने की बहुतों ने बहुत कोशिश की, कहा आज बहुत देर हो गई, आज आप कहो तो पाठ नहीं करें। मैं कहता पाठ करो, देर हो गई तो मैं उतना कम बोलूंगा, पाठ करो। मेरे प्रवचन से पाठ ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमनाय नाम का स्वाध्याय है और ये मैं बोलूंगा, ये मेरी बात होगी, और पाठ करोगे वो आचार्यों की बात होगी, वो कलश पंडित हुकुमचंद के नहीं है, ये गाथाएं पंडित हुकुमचंद की नहीं है। इन्होंने सिर्फ भाषा परिवर्तन किया है, वो प्योर कुंदकुंद की गाथाओं का पाठ है, वो अमृतचंद के कलशों का पाठ है, ख्याल में आई ना? इसलिए उन्हें कुंदकुंद और अमृतचंद की का प्रवचन मान कर उसे सुनना और करना चाहिए। इसलिए मैंने सुबह का जो टीवी पे आता है उसके पहले भी गाथा पाठ रखा है, और काय का कौन सी गाथा पाठ कि जो प्रवचन जिस प्रकरण का आ रहा है उसी की 4-5 गाथा पहले से, 4-5 गाथा बाद तक, 4-5 नहीं, वो प्रकरण जहां से शुरू हुआ है वहां से, और वो प्रकरण जहां खत्म होता है वहां तक, ऐसा नक्की करो विवेक से और वो गाथाओं का पाठ करो। 5 स्वाध्याय के भेदों में वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, उसके बाद आमनाय का नाम है, लेकिन वो आमनाय नाम शुद्ध जी का पाठ कर लिया, भलाने जी का पाठ कर लिया, और ये नमो कालमंद का 9 बार 1 बार 8 दफे बोलना, ये क्या है? ये भी तो पाठ ही है ना, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय तो है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, यही तो है ना उसका स्वाध्याय का भेद। ये स्वाध्याय का भेद है, इस नवोकार मंत्र तो पढ़ना ही। मेरी इन बातों से नवोकार मंत्र नहीं पढ़ना ऐसा अर्थ नहीं निकालना, समझना है ना। अभी देखिए पढ़ते हैं अपन वो, अब नीचे से 4 पंक्तियां, पेज नंबर 225। अब व्यवहार नय से जीव बद्ध है और निश्चय नय से अवध है इत्यादि विकल्प रूप नए पक्षपात को स्वीकार न करते हुए शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से पुण्य पापादि पदार्थों से भिन्न शुद्ध समय सार का कथन आगामी 4 गाथाओं में करते हैं। बहुत मार्मिक ये पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं? देखो कि ये आत्मा बंधा है, ये भी नए का एक पक्षपात है, और नहीं बंधा है ये भी एक पक्षपात है। अब एक कैसे देखिए, जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि साहब एक साधु जी विराजमान हैं और एक गाय निकल गई सामने से, कसाई आया कि गाय किधर को गई, तो वो क्या करे, सत्य बोले कि झूठ? यदि सत्य बोलता है तो कसाई गाय को पकड़ लेगा, काट डालेगा, और झूठ बोलता है तो गाय बच जाएगी, तो झूठ बोले। मगर तीसरा रास्ता है ना चुप रहने का, तो वो कहते हैं एक नए कहता है बधा है और दूसरा नए कहता है बंधा नहीं है, तो आप नक्की बताओ कौन सा नए सच्चा है कौन सा झूठा है। तो अभी तक तो कहते आए हैं कि व्यवहार नए है और निश्चय नए उपाधे, ये समझाया है। अब क्या कह रहे हैं मालूम? अब कह रहे हैं कि तीसरा रास्ता नहीं है, ये बंधा और छूटा की चर्चा लाए कहां से? तो ये आत्मा बंधा है कि छूटा है, ये प्रश्न कहां से खड़ा हुआ? ये ऐसा प्रश्न नहीं है। मैं किसी भी सज्जनोत्तम पुरुष से ये कहूं कि भाई साहब कब आ गए आप, कि कहां से? मैं नहीं कहां हूं, यानी कहां से नहीं, जेल से। जेल से कब छूटे? क्या बकते हो? मैं जेल में गए, मुझे जेल में जाना बता रहे हैं आप? मैंने जाने की क्या कह रहा हूं, मैं तो जेल से छूटने की कह रहा हूं। क्यों? बोलो क्या अर्थ है उसका? कि भाई साहब मेरे बारे में जेल शब्द मेरे नाम के साथ जुड़ता ही नहीं है। ये झगड़े की जड़ तो ये है कि तुमने जेल का मेरे के नाम के साथ जोड़ा। क्यों? ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा बंधा है कि छूटा, तो छूटना भी तो बंध पूर्वक होता है। जेल से छूटना भी जेल से जाने पूर्वक होता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा बंधा है, छूटा की बात कहां से आई है? क्योंकि ये बंध कहा ए यत्वे तेन विसंवादिनी होई, कि एकत्व में बंध की चर्चा ही झगड़ा पैदा करने वाली है। देखो बहुत स्पष्ट लिखा है, बंध कहा ए यत्वे। आचार्य विद्यानंद जी ने, एक पंडित हैं ब्राह्मण, बहुत अच्छे जैन दर्शन के विद्वान हैं, क्या नाम है, दामोदर शास्त्री, और वो दिल्ली में रहते थे जहां अपना वीर सागर काम करते हैं, उस पोस्ट पे काम करते थे वो। तो उनने उनसे कहा कि तुम समय सार की टीका लगो। उनने वो अपने छाती की टीका उनसे लिखवाई। बहुत पुरानी बात है, 20 वर्ष से ज्यादा हो गए होंगे, और ज्यादा हो गए होंगे। और विजयानंद जी यहां से अहमदाबाद होते हुए बाहर जा रहे थे, तो अहमदाबाद में वो जो है ना सोनी जी का, डॉक्टर सोने का आश्रम, क्या है, कोवा, वहां उनका कार्यक्रम था। तो बड़ा कार्यक्रम था, देश के बहुत लोगों को बुलाया था। तो उस वक्त उनने मुझे भी बुलाया था कि विद्यानंद जी आ रहे हैं तो आप भी आइए, विद्यानंद जी की भी इच्छा थी। तो मैं उसमें गया था, करीब 20-25 वर्ष से भी ज्यादा घटना पुरानी बात है। तो वहां जो वहां की भी सुनाना है मुझे, वहां पर विद्यानंद जी ने मुझे वो टीका दी और ये कहा कि लिखाई है मैंने, एक ब्राह्मण विद्वान से लिखाई है और मुझे आपसे ज्यादा प्रमाणिक आदमी नहीं दिखता, ये उस वक्त की बात बता रहा हूं अभय कुमार जी। तो आप इसको यदि एक दीर्घ देख करके और मुझे कहें कि ये ठीक है तो फिर मैं इसे छपा दूं। भाग्य से आज वो दामोदर शास्त्री भी जिंदा है और विद्यानंद जी भी जिंदा है और मैं टीवी पे बोल रहा हूं, ये टीवी पे जाएगी, दुनिया सुनेगी। इस बात की प्रमाणिकता के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये बात। मैंने उस टीका को आद्योपांत अक्षर साथ देखा गहराई से, तो और मैंने उसको ओके किया, घबराना नहीं। उसमें मुझे कई चीजें ऐसी मिली कि जो टोन अमृतचंद की थी वो उसमें मूलता थी पर अपनी और टीकाओं में उतनी स्पष्ट नहीं थी। अब वो टीका छप नहीं पाई, क्यों नहीं छप पाई, क्या झगड़ा हो गया, कहां पड़ा वो खो गई। तो मैंने दामोदर शास्त्री से अभी पूछा था कि भाई कहां गई, जब मैं मेरी टीका आपकी बोल। उन्होंने कहा बस डॉक्टर साहब कुछ मत पूछो। मैंने कहा आप नहीं छपी तो नहीं छपी, लेकिन आपके पास तो होगी। यही तो मैं कहता हूं कि मैं तो मूल कॉपी एक थी, मैंने दे दी थी, अब पता ही नहीं कहां है, वो खो गई, क्या हो गया। तो तेन विसंवादनी हुई, इसको उन्होंने वो टीका से और उससे देखा था, ये बंद की कथा ही विसंवाद करती है। तो उन्होंने अपन तो ये कहते हैं कि आत्मा बंधा है, ये झगड़ा है। अब अंतर बताऊं मैं आपको क्या दादा, वो कहते हैं बंद बंधा है ये झगड़ा नहीं है, ये तो एक न्याय का पक्ष है, छूटा है ये तो एक न्याय का पक्ष है, लेकिन आत्मा के बारे में ये बंद की बात कहां से आई, बंद की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। अब आपकी समझ में आई ना, ये उसमें था। अब बताओ आपकी नौबत किसमें है, अब आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही जब मैंने टीका लिखी तो प्रत्येक आत्मा, इसका अर्थ मेरे को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा था। दो तीन जगह आया ना प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा। तो मनोहर लाल बरनी की सप्तदशांगी टीका, उसमें प्रत्येक आत्मा का अर्थ लिखा था, जो मेरे को बहुत अपील किया। क्या वो मैंने उसमें लिखा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये पूज्य गुरुदेव श्री बना, आपने एक विषय रखा था ना कल कि कहां कहां से क्या क्या लिया है। तो गुरुदेव श्री अमृतचंद, जयसेनाचार्य, पांडे राजमल जी, बनारसी दास, जयचंद जी छावड़ा और पूज्य गुरुदेव श्री और कुछ दन्य थोपी। कुछ दन्य टोपी का अर्थ समझते हैं, नहीं समझते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी शायद जानते हो रामायण किस आधार पर लिखी गई, आप जानते हैं। तुलसीदास जी की रामायण किस आधार पर लिखी गई, तुलसीदास की रामायण जो 8वीं शताब्दी में जैनियों की स्वयंभूकृत रामायण है, क्या नाम है उसका, स्वयंभू कवि ने लिखी है और पमऊ चरऊ, क्या ग्रंथ का नाम, पमऊ चरऊ, अपभ्रंश भाषा का, नहीं सुना, जानते नहीं है। कभी कभी लगता है कितना अधूरा ज्ञान है अपने शास्त्रियों को। पमऊ चरऊ नाम के एक ग्रंथ 8वीं शताब्दी में लिखा गया, वो तुलसीदास ने उसके में बहुत लिया है और उसमें जैसे आपने रामायण पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो भी मुश्किल है। रामायण में एक नक्ति है कि इसमें 8 चौपाई होंगी, फिर उसके बाद एक दोहा होगा, फिर वो इतनी निश्चित चौपाइयों और दोहा का एक ग्रुप हो गया ना, इतने ग्रुप होंगे तो इसके बाद एक कवित्व होगा, मनहन कवित्व। आप जानते हैं ये बात क्या? नहीं जानते हैं, पढ़ी नहीं होगी कभी। अरे मैंने पूरी रामायण पढ़ी है, अद्योपांत ये कड़बक कड़बक बोलते हैं, एक स्टाइल में वो चलती है, वो सारी स्टाइल स्वयंभू की है, वो पूरी स्वयंभू कवि की है, और स्वयंभू के पमऊ चरऊ में वो स्टाइल है। शायद में कोई भी नहीं जानता ऐसा लगा कि सबको ही नया लगाते हैं है? और एक हमारे विद्वानों ने, अजैन विद्वानों ने सिद्ध किया कौन सा वो सुनो सुनो बता रहा हूं बोल रहा हूं जो कुछ बोल रहा हूं कि वो जो तुलसी के भगत जिन पर तुलसी ने पीएचडी की, तुलसीदास पर 20 से ज्यादा पीएचडी हुई होंगी, तो उनने ये रिसर्च निकाली कि एक तुलसीदास जी ने यदि कहीं दूसरी जगह से लिया है तो उनके नाम का उल्लेख करना चाहिए। तो उन्होंने तो लिख दिया, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, के तुलसीदास रघुनाथ की गाथा स्वांता सुखाय अपने सुख के लिए लिख रहा है, पर मेरे में मजा आता है मैं लिख रहा हूं, दुनिया पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके पहले तक हिंदी में ऐसी कविता नहीं बनती थी। राम का चरित्र कोई हिंदी में नहीं लिखा, संस्कृत में ही था, संस्कृत विद्वानों ने बहुत विरोध किया कि ये तुलसी की रामायण नहीं चलना चाहिए, और उनने लिखी तो उस वक्त उनको नहीं था कि इतनी पढ़ी जाएगी, वे समझते कोई नहीं पढ़ेगा, एक प्रति लिखी जाएगी और न मालूम कौन आगे सिर फिरा फाड़ के फेंक देगा, अग्नि में जला देगा क्या। उनके यहां तो अलग बात प्रसिद्ध है कि उन्होंने तो जाकर लिख के और तो राम के मंदिर के चरणों में रख दी कि भगवान तुम संभालो, मैं नहीं जानता कुछ, इन सब पंडितों को तुम संभालो। तो भगवान राम आए और उन्होंने रात में हस्ताक्षर करके चले गए, प्रमाणित हो गई, फिर सब किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो तो उनने निकाला कि वाल्मीकि रामायण से लिखी, कितनी कितनी रामायण संस्कृत में थी, प्राकृत में थी, उनसे लिखी, तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में वो उल्लेख किया तो उन्होंने सब लिखा, वो एक पंक्ति लिखी, कुछ दन्य तोपी अभय जी कि इनसे मैंने लिया और कुछ कुछ अन्य जगह से भी लिया। तो वो कहते हैं कुछ दन्य तोपी लिखकर वो स्वयंभू की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि स्वयंभू जैन था और उस तरह ब्राह्मणों के वातावरण में उसके नाम का उल्लेख करना उन्हें खतरे से खाली नहीं लग रहा था क्या। मैं दामोदर शास्त्री के नाम का उल्लेख करूं, मैं मनोहर लाल बनी के नाम का उल्लेख करूं और ऐसे नामों का उल्लेख करूं तो शायद मुमुक्षुओं को कितना पछता और कितना नहीं पछता क्या। तो ये कुछ दन्य तोपी में है, लेकिन मैंने उस टिप्पणियों में तो उनके नाम दिए, क्योंकि ये साहित्यिक जिम्मेवारी है दादा। तो मैंने कहा नहीं, यदि वो एक पंक्ति मैंने द्वादशांग टीका से ली, एक पंक्ति पूरी टीका से ली और 500 पेज की पूरी टीका 3 दफे पढ़ी, सिर्फ मिली एक पंक्ति लेकिन पढ़ी, कितने श्रम का काम है। कहा था विद्वज्जन बिजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, बंध्या किम बिजानाति महति प्रसद वेदना। अब समझ में आया नहीं, बांझ औरत जिसने कभी बाल बच्चे पैदा नहीं किए वो क्या जाने कि बच्चा जब पैदा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। क्या बंध्या किम बिजानाति महति प्रसव वेदना, जो बच्चा पैदा करते वक्त वेदना होती है महती बहुत ज्यादा, उसको बांध क्या जाने। ऐसे ही जो विद्वान नहीं है, जिनने साहित्य नहीं लिखा है, गंभीरता से नहीं लिखा है, इसे जिसे बोलते हैं ना कि कालजयी साहित्य नहीं लिखा है, वो नहीं जान सकते हैं कि इसके साहित्य के लिखने में कितनी मेहनत होती है। अब क्या विद्वज्जन बिजानाती विद्वज्जन परिश्रमम, विद्वान ही जान सकते हैं कि विद्वान का इसमें कितना परिश्रम है। आप ये निर्णय कर सकते हैं कि एक पंक्ति जो दी है कौन सप्तदशांगी टीका की, तो उसकी वजह से पूरे पेज पड़े होंगे कई दफे, सोच सकते हैं आप। अगर किसी ने सोचा है आज तक है? तो जब कभी कभी ऐसे हल्की बात में लोग करने लगते हैं, तब ये विकल्प आता है एक दफे आदि से अंत तक कोई साथ पढ़ा तो है नहीं, स्वाध्याय जमकर किया नहीं है, अपनी उस किताब के बारे में जो हल्का कमेंट्स कर रहे हैं उसके चार पेज पढ़े नहीं हैं। अब इनके ऐसे कमेंट्स की क्या कीमत है मुझे बताइए। क्यों तो ये कहते हैं तो ये तो अपना हम दुख प्रकट करते हैं जो पीड़ा हुई, ये कोई अभिमान की बात नहीं है। देखो कितने मारने की चार पंक्तियां हैं जो आपको इसमें डाली हैं मैंने। वो क्या कह रहे, विकल्प रूप नए पक्षपात को स्वीकार न करके। अब वही आचार्य निश्चय नहीं कि कितने गीत गाए हैं उनने, और उसको यहां पक्षपात कह रहे हैं ये जयसेन आचार्य स्पष्ट शब्दों में। पक्षपात जानते किसे कहते हैं? क्यों हम तो अन्याय को पक्षपात कहते हैं, क्यों इनने उनके साथ पक्षपात किया है? मेरा नंबर ही नहीं आया प्रजन करने का रसगर में, इसलिए मेरे साथ पक्षपात हुआ, क्यों होता ना। अरे किसी एक के पक्ष में एकांत से झुक जाना पक्षे पतति, क्यों पक्ष में पड़ना, तो वो कहते हैं ये तो निश्चय नहीं का पक्ष है, ये पक्ष है भाई साहब, क्यों आत्मा शुद्ध बुद्धि और कर्मों से बंधा नहीं है। नए पक्षपात को नयों को नया भाष को नहीं। अब फिर वही ऐसा भ्रम न हो जाए भगवान जी कैसा कि वो तेरहवें गुणस्थान के योग को बंध का कारण कहा जा रहा है, तो ये कहें नयों के नयों में पक्षपात बता रहे ना, ये सम्यक दृष्टि के है ना, मतलब ये सम्यक नयों के है कि मिथ्या नयों के बारे में कह रहे हैं। नए पक्षपात को स्वीकार न करते हुए शुद्ध पारनामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ये उसमें जयसेन की टीका में लिखा है। इस नय का नाम सुना आपने कभी? निश्चय व्यवहार तो बहुत सुने होंगे और परम शुद्ध निश्चय नय भी सुना है, लेकिन एक ये नय क्यों सुना परमात्मा के नहीं, तो नये चक्र का स्वाध्याय करो। इस द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद होते हैं, 3 शुद्ध 3 अशुद्ध 3 और ऐसे नॉर्मल, और एक होता है नये पक्षातीत शुद्ध परम पढ़ो ऐसे क्या पर शुद्ध पारिणामिक भाव माने जीवत्व, उस परम भाव को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। इसका विषय कौन है? वही त्रिष्टि का विषय तुम्हारा, वही त्रिकाली ध्रुव, वही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वही ध्यान का ध्येय। यदि उसको द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की दृष्टि से देखो तो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध पारणक भाव परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। निश्चय व्यवहार की दृष्टि से देखो तो बोलेंगे परम शुद्ध निश्चय नय, ख्याल में है ना। ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का सिद्धे, यदि मेरे समय सार में कई जगह लिखा है, क्या लिखा है देखो मालूम क्या मिलेगा। सिद्धे तो अकेला बोई त्रिकाली ध्रुव है, असिद्धे माने अपने में अपनापन स्थापित करने लायक, समझे ना। सिद्धे पिताजी साहब, सिद्धे भी सिद्धे सिद्धे नहीं, और ध्यान भी उसी का करेंगे तो केवल ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान उसका अपना भी करते हैं और पर का भी, समझ आई ना। तो देखो देखो 12 भावना में 2 पंक्तियां हैं, बोलो बता सकता है प्रवीण कौन सी हैं 2 पंक्तियां? वो ही है, बढ़िया है, समर भावना में ही है, समर भावना में ही है, वहीं आगे पीछे और भी बढ़िया है। उसमें लिखा है कि मैं सिद्धेय हूं, मैं ध्येय हूं, और मैं ज्ञेय हूं और ज्ञान हूं। पता कभी सोचा क्या कह रहे हैं? क्या जब ज्ञेय ज्ञान के साथ आए तो उस दोनों का 2 बातें ले ली। हम ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मैं ध्येय हूं, मैं ज्ञेय हूं, मैं सिद्धे? नहीं, तो ज्ञान में 2 चीजें डालनी है ना, और भी एक आध जगह होगा, आगे पीछे पढ़ के देखो तुम तो, क्या बोलो एक खड़े हो गए उसमें, कोई कौन सुनेगा ऐसे। देखो अब आपको पता नहीं कि इसमें एक क्या डाला, कितना सोच के डाला है। हाँ स्पीकर है ना वो, बोलो आप समझ गए। अब देखो क्या लिखा है इसमें कि वो निश्चय गे, श्रद्धे में निश्चय श्रद्धे नहीं लिखा, ध्येय में निश्चय श्रद्धे नहीं लिखा, लेकिन जब गे की बात आई तो निश्चय गे लिखा। निश्चय गे माने ये इस नये का विषय, अथवा परम भाव ग्राही वो क्या नाम, परम शुद्ध निश्चय नये का विषय, आप समझे ना। तो उसमें बुद्धि पूर्वक निश्चय लगाया, क्योंकि निश्चय व्यवहार ज्ञान में लगते हैं, तो वो यहां ज्ञान में परम शुद्ध निश्चय नये का विषय लेना, और जबकि श्रद्धा की दृष्टि तो पूरा, ध्यान की दृष्टि से पूरा, उसमें 2 भेद नहीं है। अब मैं ध्येय हूं, मैं सिद्धे हूं, मैं ज्ञेय हूं और मैं ज्ञान हूं, और एक ज्ञायक भाव हूं और मैं स्वयं भगवान हूं। वो सब दृष्टि का विषय उसमें पड़ा हुआ है क्या? देखो शुद्ध द्रव्यार्थिक नये, अब नये से यहां तक कार्य किया है, अब आगे पुण्य पापादि पदार्थों से भिन्न। अब ये क्या आ गया? अभी भिन्नता बता रहे थे तो परद्रव्यों से भिन्न बता रहे थे, रागादि से भिन्न बता रहे थे, अभी तक यही टोन चली आ रही थी ना कैलाश जी, अब ये नई टोन बदल दी। एक एक शब्द में कितना मर्म है। अब आगे का अधिकार पुण्य पाप आ रहा है, ये उसके बीज इसमें पड़े हैं, ये नाटक है, नाटक शास्त्र का और महाकाव्य का एक नियम है। और जब मैंने वो महाकाव्य लिखा था तब मेरी शादी नहीं हुई थी 18-19 वर्ष में, तब उसमें मैंने तब जानता था, और उसमें मैंने इस नियम को निभाया है। क्या नियम है बोलो? क्या जो पहला प्रकरण जब खत्म हो तो अगले प्रकरण में क्या आएगा उसके बीज डाल देना, ये नियम है उसका। क्या उससे जो अच्छा पाठक होगा उसे पता चल जाएगा कि अब यहां क्या बात चल रही है। मान लो नेमिनाथ का था वो, अब नेमिनाथ की बारात जा रही है, तो यहां बारात यहां हम वर्णन कर रहे हैं बारात जाने का, अब समझे ना। और अब फिर हमें राजुल के यहां जाना है, अब अगला अध्याय राजुल का आएगा। तो आपने वो पढ़ी सील कथा वगैरह, दर्शन कथा सील कथा, ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं सुनी? उनमें ऐसी पंक्ति आती है, ये परमानेंट पंक्ति है यहाँ की कथा यहाँ पर रही, आगे और सुनो जो भई पढ़ी ना, कई हर कथा में आएगी कि अब यहाँ जो मनोरमा थी उसके यहाँ क्या बात हो रही थी, कोई बात यहाँ रही। अब वो जो उसका पति था वो वहां से, अब वहां की बात चलेगी, तो यहाँ की कथा वहां ही रही, अब आगे और सुनो जो भई। क्या हुई आगे कि बिन बुलाए आए ससुराल, कारण कौन भयो अधिकार। ये सब मैंने 8-9-10 वर्ष की उम्र में सुनी थी और उसके बाद एक दफे भी नहीं पढ़ी। ये सब बड़ौदा स्वामी की सुनी है क्या? सुन क्या कि बिन बुलाए आए ससुराल, वे पहुंच गए थे उनके पति देव मनोरमा के यहां, और पुराने जमाने में बिना बुलाए ससुराल में जाना लड़का का और लड़की का बहुत ही असंभव माना जाता था। अब आजकल का तो कोई ठिकाने नहीं है, क्यों है? वो पहुंच गए तो लगा कुछ ना कुछ अनहोनी घटना हुई है, तो सब लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध ली। सास ससुर ने सबको मन में आशंका हो गई, लेकिन उनसे कुछ कहेंगे तो उनको बहुत अपमान फीलिंग होगा, तो उनने अपनी बेटी को ही कहा कि बेटी पता लगाना क्या हुआ, क्यों? और जब उसकी पत्नी जब उन्हें मिली और उनने पूछी तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हो गया और मेरे पिताजी ने मुझे अपने घर से देश निकाला दे दिया, घर निकाला दे दिया कि तुम हमारे घर से जाओ, तो कोई बात नहीं आप यहां आ गए तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब यहीं रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ये नहीं, अपने पिताजी के पास तो अरबों की संपत्ति है और सब कोई बात नहीं है ना, तो क्या है? नहीं ये नहीं मैं सकता, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल में रहूं। क्यों? उत्तमा आत्मना ख्याता पितु ख्याताश्च मध्यमा है, अधमा मातुले न ख्याता और ससुरे ने अधमा धमा। समझ में आया इसके? नहीं आया, नहीं आया। अपने बाप के नाम से जाना जाए वो बेटा उत्तम है, कि किसका बेटा है कि फला का। हाँ, उत्तमा आत्म खुद से जाना जाए, कोई पूछे नहीं ये किसका है, क्या पूछना कि इसके कौन किसका बेटा है, बस ये है ना। क्यों समझिए ना, उत्तमा आत्मना ख्याता, जिसकी पहचान अपने से हो वो सर्वश्रेष्ठ है, और पितु ख्याताश्च मध्यमा, कि लोग जिसका परिचय बाप के नाम से दें कि ये उनका लड़का है, ये उनका लड़का, अच्छा था उनका लड़का, आओ 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 भैया, और उनको नहीं बताते ये फला है तो ठीक है, शिविर में 500 लोग आए। समझ में आया ना, ये हो गए कौन? पितु ख्याता, ये मध्यमा, और ये कौन है कि ये फला का भांजा है। समझ में आई कि नहीं आई? कि मामा के नाम से जाना जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कुछ नहीं है और उसका बाप भी कुछ नहीं, उसे भी कोई नहीं जानता और उसके बाप को भी कोई नहीं जानता। क्यों? कहां से जानता है? मामा के नाम से जानता। मामा जरूर ऐसा है कि वो इतना प्रसिद्ध है कि ऐसा बताने से लोगों को एकदम ठीक हो जाता है, और ससुरे ने अधमा धमा कि जो उनके जमाई है गया काम से, वो अधम से अधम है। क्या जाएगा? पहले आया था समझ में? नहीं आया था ना। उत्तमा आत्मना ख्याता पितु ख्याताश्च मध्यमा अधमा मातुलेन ख्याता और ससुरी ने धमा धमा। ये ऐसी वृत्ति है। वो ये कहते हैं कि देखो इस नए से है, इस नए से कि आत्मा किसी नए से नहीं है, आत्मा स्वयं से है, ना देखो क्या रखा, अब पुण्य पाप, अब पुण्य मैं कह रहा था अगले की सूचना डाल देना, पुराने कथन में अगले की ये सूचना डाली है, क्या आगे पुण्य पाप अधिकार आएगा, एक पॉइंट। अब दूसरा अर्थ होता है, भाई जी ध्यान देना कि पुण्य पाप अधिकार में तो ये बताया है कि पाप के समान पुण्य भी है, है। पूरी टोन यही है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है, ये कहते हैं ये नहीं है, आप बहुत धोखे में हो, ये सारा भेद विज्ञान का प्रकरण चल रहा है समर अधिकार तक, अपनी इसमें लिखा है अनुशीलन में, है ना। तो ये कह रहे हैं कि पुण्य पाप से भी आत्मा भिन्न है, ये है इसकी विषय वस्तु। अब वो जो पुण्य के समान पाप के समान पुण्य भी है, ये तो जगत में ऐसा मानते हैं कि आधे पाप को हे मानते पुण्य को उपाधे, इसलिए वो चर्चा आ गई। उन्हें बताना तो ये कि पुण्य पाप भी आत्मा नहीं है, पहले जी कह रहे देखो पुण्य पाप आदि पदार्थों से भिन्न, अजीब अधिकार में अजीब से भिन्न बताया, फिर कर्ता कर्म का की भिन्नता बताई, अब सब पुण्य पाप से भिन्नता बताएंगे, फिर आश्रमों से भिन्नता बताएंगे, फिर संवर अधिकार आएगा और पूरी भिन्नता भेद विज्ञान का फिर अभिनंदन करेंगे, फिर अभिनंदन समारोह होगा संवर अधिकार में। संवर अधिकार पूरा भेद विज्ञान का अभिनंदन का है, इन्होंने लिखाया हुआ। और ये मैंने हर अनुशीलन के पहले हर पैराग्राफ में ये सब बातें डाल दी हैं, ऐसे ऐसे कर करके। देखो अब इन पदार्थों से भिन्न शुद्ध समय सार का कथन आगामी चार गाथाओं में करते हैं, ठीक हो गया। अब आगे चलते बढ़ते हैं थोड़ा। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अब आगामी गाथाओं में नव तत्वों में छिपी हुई पर नव तत्वों से भिन्न आत्मज्योति, तो नव तत्वों में पुण्य पाप तत्व भी है तो उनसे भिन्न आत्मज्योति का स्वरूप स्पष्ट करेंगे और उसके अनुभव की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे जो 44वीं गाथा में है, आया ना। पदार्थों की चर्चा में जीवाजीवादि पदार्थों को मुख्यता न देकर पुण्य पापादि पदार्थों की बात कहकर आगामी अधिकार का संकेत भी दे दिया है, जब नौ तत्वों में छिपी हुई आत्मज्योति को बताना तो बाकी नौ तत्वों से भिन्न बताते, पुण्य पाप से भिन्न क्यों कह रहे, कभी बहुतों से बता दिया बहुतों से बताएंगे, लेकिन अब जो गाथाएं आएंगी वो पुण्य पाप से भिन्न बताने की आएंगी। आगामी चार गाथाओं में कर्ता कर्म अधिकार समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पुण्य पाप अधिकार आएगा, इस बात का संकेत उक्त कथन में है। ये जो बातें मैंने आपको समझाई वे सब इसमें लिखी हैं। अभी तक आचार्य देव विभिन्न नयों से वस्तु को समझाते आए हैं, अब आगामी गाथाओं में वे हमें नए पक्षातीत वस्तु की ओर ले जाना चाहते हैं, है ना। यही कारण है कि उक्त गाथा के माध्यम से एक बार संक्षेप में व्यवहार और निश्चय नए की वस्तु को से वस्तु को स्पष्ट किया है, कभी अंत तक एक कह दिया अंत में जीवे नए भणियम बद्धा बद्धम है ना गाथा, नए भणियम बद्धा बद्धम है ना गाथा, शुद्ध नयस्य जीवे अबद्ध पुट्ठम अवधि कम्मम, एक दफे उन्होंने इस प्रकरण को यहां पर अधिकार दोहरा दिया एक तरीके से पहली गाथा से यहां तक। कर्ता कर्म एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व एक, और अब ये पुण्य पाप से भी भिन्न है ये बताएंगे, ये इसमें ये कहना चाहते हैं आचार्य। देखो अपन ने ये पढ़ा ना अपना, ये अब जैसे अपन बोलते टिप्पणी अपना अपनी तरफ से लिखा, तो ये इसमें जो मैंने इतनी बातें समझाई वो सब इसमें आ गई। यदि आप शांति से पढ़ें तो ये इतनी बातें आपके ख्याल में आ सकती हैं कि नहीं आ सकती, इसमें कोई अस्पष्टता की कमी रह गई नहीं रही ना। तो मेरे कहने का कोशिश एक की गई है कि जो ध्यान से पढ़े उन्हें वो बात ख्याल में आ जाए कि क्या कहना चाहते हैं। अब अपनी आगामी गाथा चलती है 141वीं गाथा में आत्मा के संदर्भ में व्यवहार में वो निश्चय नय के पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। उसी के संदर्भ में आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा की उत्थानिका आत्म ख्याति में ततः किम, इससे क्या, मात्र इतनी ही देते हैं। देखो सबसे छोटी स्थान और दरगाह क्या, एक जगह और है तथा ही, मतलब इतनी उत्थानिका। अब बोले क्या उत्थानिका है, तथा किम, क्या कह रहे हो। तात्पर्य यह है कि कोई न कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे उससे क्या प्रयोजन है, क्योंकि मैं तो नए पक्ष से पार हूं, नए विकल्पों से विकल्पातीत हूं, और आत्मानुभूति भी नए पक्षातीत अवस्था का नाम है। अतः मुझे इन नए विकल्पों से क्या प्रयोजन है, इस आशय का प्रतिपादन करने वाली आगामी गाथा इस प्रकार है। पर देखो ये अपने इतने इतने पेज लेन लिखी सिर्फ काय का अर्थ है, तथा किम, तथा किम, बहुत ताकत है इसमें। क्या जैसे आपने वो आध घंटा समझाया कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, चाहे उसकी अच्छाई करी हो चाहे बुराई की हो, समझे ना। और आप हमसे चाहते हैं कि हम रिएक्शन दें कि भाई आपने जो उसकी बुराई करी, अब हम तो आज तक फिर महान समझते थे और अब हमने उन्हें बहुत दुष्ट समझ लिया, अब उसके विरुद्ध जो कुछ भी हम पे बन पड़ेगा हम करेंगे। कि आपने बहुत प्रशंसा करी तो हमने ये निर्णय पे पहुंच गए कि बहुत ही अच्छा है, अब जो हमसे बन सकेगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसी आशा से आपने इतनी लंबी चौड़ी बात करी और हमने कही ठीक है, इसे क्या क्या हम क्या करें, खत्म बात, खत्म, दूसरी बात करो, क्या अब समझ गया ना उसका अर्थ, होगी ना आपकी बात पूरी। आपको शिकायत थी ना कि हम आपकी कुछ नहीं सुनते हैं, अब सुना दी ना आपने पूरी, अब दूसरी बात करो, होगी ना, तथा किम, आप समझे ना ऐसा अर्थ है इसका। क्या हम तुमने कितनी बुराई की हो, इससे हम उसे बुरा मानने वाले नहीं हैं। कहां समझेगा आप, क्या नहीं समझेगा, समझ गए कि क्या समझ गए कि तुम उनके प्रति अनंत द्वेष रखते हो, ये हमारी समझ में आ गया है। कि अच्छाई की हो तो तथा किम, कि क्या कह, कि आप समझे नहीं मेरी बात, कि नहीं समझ गए कि क्या समझे, कि तुम उनके पिछलग्गू हो, अंधे भगत हो, उनके बिना जो भी कहेंगे वही करोगे, हमारी समझ में आ गया। कि हमने तो वो समझाया था कि वो तो यहां है ही नहीं, तो उसका निर्णय हम जब करेंगे जब उससे मिलेंगे। अभी तुमने तुमको सुनाना, हमने तो हमने तुम्हारे बारे में निर्णय लिया है, ये तुम समझे ना, तुमने तुम्हारे बारे में हमने निर्णय लिया है, अब उसके बारे में हम स्वयं हमें आवश्यकता महसूस होगी तो हम स्टडी करेंगे और फिर निर्णय लेंगे, पर आवश्यकता नहीं होगी तो हमारे पास कहां इतना समय है, क्यों कि क्या है कि साहब वो फलाना नेता ने इतने खाए, फलाने ने इतने खाए, इतने ने इसने इतने नहीं खाए, उसने इतने नहीं लिए, तथा क्यों। आप समझ नहीं ना, अब की बात तो कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, तथा क्यों, अब समझ तथा क्यों का अर्थ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या करे कि एक नए कहता है कि आत्मा बंधा है और दूसरा नए कहता है कि आत्मा बंधा नहीं है, आचार्य कहते तथा क्यों क्या माथा मार, क्या लेना देना, खत्म हो गई ना बात, सुन ली ना हमने इतना सुनाने के बाद इतनी गाथाओं में 141 गाथा में इतना सुनने के बाद नयों का विवेचन और आचार्य ने एक सेकंड में उड़ा दिया तथा क्यों। अब पढ़ता हूं मैं तथा क्यों का अर्थ, इसमें क्या लगा, 141वीं गाथा में आत्मा के संदर्भ में व्यवहार नये और निश्चय नये के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है, कोई पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। मैंने एक वकील जैसा ही अपना पक्ष प्रस्तुत कर देता है ना, मजिस्ट्रेट ये नहीं मानता है, पर इनने इस आदमी का पक्ष प्रस्तुत किया है, तुम्हारी बात हमने पूरी सुन ली। उसी के संदर्भ में आचार्य अमृतचंद इस गाथा की उत्थान का आत्मख्याति में तथा किम हिंदी इसके क्या, मात्र इतनी ही देते हैं। तात्पर्य यह है अभी कि कोई नए कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे उससे क्या प्रयोजन है, मेरा प्रयोजन उससे सिद्ध होने वाला नहीं है, मेरा प्रयोजन तो नए पक्षातीत होने में है, क्योंकि मैं तो नए पक्ष से पार हूं, नए विकल्पों से विकल्पातीत हूं, आत्मानुभूत भी नए पक्षातीत अवस्था का नाम है। अब मुझे इन नए विकल्पों से क्या प्रयोजन है, इस आशय का प्रतिपादन करने वाली आगामी गाथा इस प्रकार है। अब आए ना ख्याल में क्या कह रहे थे ताकि भैया उलझने के लिए हजार जगह हैं, वो कह रहे नए पक्षों से समझो लेकिन नए पक्षों में उलझो मत। क्या एक ऐसा प्रश्न भी आया है, नए चक्र में मैंने कोट किया है, आज संजीव नहीं दिख रहा है, कहां है कि कहीं बैठा है क्या, नहीं है गोदा, उसमें ऐसा लिखा है कि ये जो नए पक्ष है आपने सब नयों का वर्णन किया है, इससे फायदा क्या है, ऐसा प्रश्न उठाया आप लोगों ने। तो आचार्य देव ने कहा कि ये अनादिकाल से मिथ्या नयों के पक्ष में पड़ा हुआ है, तो सम्यक नए माने